क्योंकि आस्था को लेकर अरमान के मन में शक था जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। प्रियंका के बॉयफ्रेंड का शादी से अगवा किया जाना, प्रियंका का शादी से चले जाना और फिर आस्था का अरमान को बिना बताए शादी कर लेना, ये सारी बातें आस्था को शक के घेरे में खड़ा कर रही थीं। वेल, आस्था की सहमी हुई नज़रें उस एक्सीडेंट पेशेंट को देख रही थीं जिसका एक्सीडेंट हुआ था। अरमान तुरंत आस्था के ठीक सामने आकर खड़ा हो गया। अरमान ने उसके कंधों को कसकर पकड़ लिया और झल्लाते हुए बोला, आकाश कहाँ है और तुम यहाँ पर क्या करने आई थी? हाँ, जवाब दो मुझे, बोलो, बताओ क्या किया तुमने आकाश के साथ? कहीं तुमने उसकी जान खतरे में तो नहीं डाली? बोलो, जवाब दो मुझे। आस्था पहले ही एक एक्सीडेंट केस देखकर ट्रॉमा में थी। इस तरह के एक्सीडेंट केस को देखकर उसे अपने माता पिता की याद आती थी जिनका एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उसके सामने फिर वही मंजर घूम आया था, अरमान के अचानक सामने आ जाने और उसके सवालों ने आस्था के दिमाग में कई सारे सवाल घुमा दिए। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि वो अरमान को क्या जवाब दे। वो कंपकपे हाथों से एक्सीडेंट केस की ओर इशारा कर रही थी और बोलने की कोशिश कर रही थी कि किसी का एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन अरमान वीर रायचंद की बात सुनने के बाद काफी हद तक दिल मिला गया था। आकाश के साथ आस्था के बाहर जाने की जानकारी ने उसे आकाश की सुरक्षा की चिंता करा दी थी, इसीलिए वो उस वक्त आस्था पर ही शक कर रहा था। उसने आस्था के हालात की ओर एक बार भी नहीं देखा। आस्था ने देर तक कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे पैनिक अटैक आया था। वो ट्रॉमा में थी जिसकी वजह से उसके मुंह से कुछ आवाज निकल ही नहीं रही थी। उसने अभी अभी एक्सीडेंट केस देखा था। अरमान ने उसे हॉस्पिटल की दीवार से लगा दिया और उसका गला जोरों से पकड़ लिया। आस्था को पहले ही पैनिक अटैक की वजह से सांस लेने में परेशानी हो रही थी। अरमान के इस बर्ताव ने उसकी सांसें और भी ज्यादा धीमी कर दीं। अचानक वहां एक आवाज गूंजी, चटाकक। अरमान ने आस्था के कोई जवाब ना देने पर खींचकर उसके मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया था। वो फिर उसका गला दबाते हुए पूछने लगा, बताओ कहाँ है आकाश? क्या किया तुमने आकाश के साथ? बोलो, जवाब दो मुझे। अगर आकाश को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और जिस मकसद के लिए तुम यहां आई हो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। याद रखना, मेरा नाम अरमान सिंघानिया है और अरमान सिंघानिया अपने दुश्मनों को कोई आसान मौत नहीं देता है। अरमान बड़े ही खतरनाक तरीके से आस्था को घूर रहा था। आस्था पहले ही एक्सीडेंट केस देखने के बाद ट्रॉमा में थी। अरमान के व्यवहार और थप्पड़ से आस्था सदमे में चली गई। उसकी आंखें पूरी तरह से बंद हो चुकी थीं और वो अरमान की बाहों में ही झूल गई थी। दूसरी ओर डॉक्टर रश्मि और आकाश केबिन में थे। हॉस्पिटल के एक स्टाफ मेंबर ने डॉक्टर रश्मि की आवाज़ सुनकर उनके केबिन का दरवाज़ा खोल दिया था। डॉक्टर रश्मि गुस्से से आकाश की ओर घूरती हुई जल्दी ही उस केबिन से बाहर निकल गई थीं। डॉक्टर रश्मि के बाहर निकलते ही आकाश ने सोचा कि उसे आस्था से मिलना चाहिए और उसे थोड़ा सा डांटना भी चाहिए था। जैसे ही आकाश बाहर निकला, उसने आस्था को केबिन के बाहर नहीं पाया और हैरान हो गया। उसने सारी जगह पर दौड़ भागकर आस्था को ढूंढना शुरू कर दिया था। आस्था उस वक्त उस एक्सीडेंट केस के पीछे पीछे इमरजेंसी रूम तक चली गई थी। वो रूम हॉस्पिटल के सेकेंड फ्लोर पर था। आकाश आस्था को ढूंढने के चक्कर में सारी जगह खोजने लगा था। उसे लगा कि कहीं आस्था दुश्मनों के हाथों तो नहीं चढ़ गई। आस्था कोई आम लड़की नहीं थी, वो द डेविल किंग और सबसे बड़े बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया के पत्नी थी। उसकी सुरक्षा काफी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। आकाश दौड़ते भागते ऊपर सीढ़ियों की ओर जाने लगा। वहां उसे देव दिखाई दिया जिसे देखकर आकाश हैरान हो गया। आकाश उसके पास जाकर बोला, क्या हुआ देव, तुम यहां क्या कर रहे हो? देव आकाश की ओर देखकर बोला, आकाश भाई, आप कहां थे? आप ठीक तो है ना? और बॉस को तो लगा कि आपकी जान को खतरा है। क्या या? आकाश कन्फ्यूज्ड हो गया और शांत स्वर में बोला, मेरी जान को कैसे खतरा हो सकता है? लेकिन मैं तो यहाँ पर आस्था को लेकर आया था ना? देव सवाल करते हुए बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? क्या आस्था भाभी ने आपको वीर के हवाले नहीं किया था? आकाश शोक हो गया था और सोचने लगा, इन सब लोगों को आखिरकार हो क्या गया है? इस तरह से बातें क्यों कर रहे हैं? आकाश ने देव से पूछा, आस्था ऐसा क्यों करेंगी और कहाँ है आस्था? मैं तो उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, क्या तुमने उसे देखा? देव ने अपनी उंगलियों से सामने वाले इमरजेंसी रूम की ओर इशारा किया। उसमें एक डॉक्टर आस्था का इलाज कर रहा था। आकाश हैरान हो गया और सोचने लगा, अचानक से आस्था को क्या हुआ है? अभी तो ठीक ठाक थी। आकाश जल्दी ही उस वार्ड में घुस गया था। वो आसपास देखने लगा। जल्दी ही उसकी नजर अरमान पर पड़ी जो कि वहीं खड़ा हुआ सपाट चेहरे के साथ आस्था को देख रहा था। आस्था के बेहोश होने पर अरमान उसे जल्दी ही एक डॉक्टर के पास ले आया था। वो आस्था को कुछ नहीं होने देना चाहता था। उसे आस्था से काफी सारे हिसाब किताब बराबर करने थे। आकाश के आते ही अरमान चौंक गया और आगे बढ़कर उसे गले से लगा लिया। वो चिंता भरी आवाज में बोला, तू ठीक है ना? तू अब तक कहाँ था? उस वीर रामचंद ने तेरे साथ कुछ किया तो नहीं ना? अरमान की सुई अभी भी वीर रायचंद पर अटकी हुई थी। वो यही सोच रहा था कि वीर रायचंद ने ही आस्था को उसकी जिंदगी में प्लांट किया है। आकाश अरमान की बातें सुनकर हैरान था और झल्लाते हुए बोला, ये क्या बकवास कर रहा है तू? वीर रायचंद को इतनी हिम्मत कहाँ से कि मुझे टच भी कर सके? और उस वीर का हॉस्पिटल में क्या काम? और आस्था वो कहाँ है? मैं उसे कब से ढूंढ रहा हूँ, मुझे वो नहीं मिल रही है। अरमान असमंजस से उसकी ओर देखने लगा और फिर कहा, क्या मतलब? मैं तेरी बात नहीं समझा। आकाश ने गंभीरता से कहा, देखो अरमान, इस वक्त कुछ भी बात सोचने समझने का टाइम नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आस्था इस वक्त कहाँ है। बात करते हुए आकाश ने अरमान की नजरों का पीछा किया और जल्दी ही उसकी नजर एक बेड पर पर्दे के ठीक पीछे आस्था पर पड़ी, जहाँ उसका इलाज किया जा रहा था। आस्था को बेहोश देखकर आकाश सदमे में चला गया। वो हैरान होकर बोला, क्या हुआ इसको? क्या किसी दुश्मन ने इस पर अटैक किया है? मैंने तो अभी सही सलामत उसको केबिन से बाहर देखा था, अचानक से इसको ये क्या हुआ? बताओ अरमान, क्या हुआ है आस्था को? अरमान को अब समझ में नहीं आ रहा था कि वो आकाश को क्या जवाब दे। उसने सोचा था कि आकाश को ढूंढने के लिए उसे और कितने पापड़ बेलने पड़ेंगे, लेकिन आकाश तो खुद चलकर उसके सामने आ गया था। इसी चक्कर में उसने आस्था पर हाथ उठा दिया था। उसने आस्था को टॉर्चर करने की कोशिश भी की थी। अरमान के लिए वहां रुकना मुश्किल हो रहा था। वो एक नजर आस्था की ओर देखता हुआ फटाफट वहां से बाहर निकल चुका था। देव वहां आया और आकाश ने उससे पूछा, देव सच बात बताओ, क्या हुआ यहाँ पर? देव ने हिचकिचाते हुए सारी बातें आकाश को बता दी थी। बॉस को लगा था कि आस्था ने वीर को आपकी टिप दे दी है और वीर रायचंद ने आपको अगवा कर लिया है, इसीलिए बॉस ने आस्था पर हाथ उठाया और उसे मारने की कोशिश की। आकाश ने यह सुनकर गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर ली थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने हॉस्पिटल की दीवार पर एक तेज मुक्का मार दिया था। वहीं दूसरी ओर अरमान के वहां से निकल चुका था। अरमान के लिए अब वहां खड़े रहना मुश्किल हो चुका था। अरमान सिंघानिया अकेला ही अपनी कार चलाता हुआ सीधा अपने फार्म हाउस की ओर रवाना हो चुका था। उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था।
अरमान का गुस्सा और नफरत जब हद से ज्यादा बढ़ जाता था तो वो खुद को शांत करना चाहता था। अगर वो खुद को शांत नहीं करता तो इस गुस्से और नफरत की आग में न जाने वो कितनों को जला देता। वो ना कुछ सही देखता न गलत देखता, क्योंकि उस वक्त उसकी आंखों पर गुस्से और नफरत की पट्टी बनी हुई थी। दूसरी ओर हॉस्पिटल में आस्था अभी तक बेहोश थी। उसे पैनिक अटैक आया था और अरमान ने उसे फिजिकल हर्ट किया था, जिसकी वजह से उसे अभी तक होश नहीं आ रहा था। उसकी सांसें स्टेबल नहीं हो रही थीं। डॉक्टर रश्मि को बुलाया गया। डॉक्टर रश्मि आकाश को वहां देखकर हैरान थी। आस्था पर थप्पड़ और गला दबाने के निशान देखकर उसकी धड़कनें थम सी गई थीं। डॉक्टर रश्मि गुस्से से आकाश की ओर देखने लगी और बौहें से कोड़ते हुए बोलने लगी, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि आकाश मल्होत्रा तुम इतना ज्यादा गिर जाओगे। सिर्फ इस लड़की की छोटी सी हरकत के लिए तुमने इसे इतनी बड़ी सजा दे दी। तुमने उस पर हाथ उठा दिया और उसको जान से मारने की कोशिश की। रश्मि ने यही समझा कि आकाश ने ही आस्था को टॉर्चर किया है। आकाश को आस्था पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि आस्था ने रश्मि और आकाश को एक केबिन में बंद कर दिया था। आकाश सपाट चेहरे के साथ रश्मि के इल्जाम को सुनता रहा था। वो खुद आस्था की हालत देखकर बहुत ज्यादा दर्द में था, इसलिए उसे आस्था के लिए रश्मि की तड़प का एहसास था, इसलिए उसने रश्मि की बात पर कोई रिएक्ट नहीं किया। आस्था की ऐसी हालत देखकर आकाश सोच भी नहीं सकता था कि अरमान अपने गुस्से और नफरत में इतना अंधा हो जाएगा कि उसे सही गलत की पहचान भी नहीं रहेगी। देव ने बाकी तीनों को भी फोन कर दिया था। सुमित, जो काफी दिनों के बाद अपने एक बिजनेस की बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग्स में था, शॉपिंग करने के चक्कर में वो लोग अपना काम नहीं कर पाए थे। उनका एक दिन का नुकसान काफी बड़ा होता था, साथ ही साथ उन्हें अपने डेविल किंग के द्वारा दिया गया काम भी करना था। वो लोग 24 घंटे काम किया करते थे। ध्रुव उस वक्त एक बड़ी इंपॉर्टेंट सर्जरी में बिजी था। बहुत छोटा सा बच्चा था जिसकी एक सर्जरी होनी थी। उसके लिए डॉक्टर ध्रुव को ही अपॉइंट किया गया था। डॉक्टर ध्रुव से बेहतर सर्जरी कोई नहीं कर सकता था। ध्रुव सर्जरी के लिए पूरी तरह से तैयारी कर चुका था, जिसकी वजह से वो देव का फोन नहीं उठा पाया। देव लगातार उसे फोन और मैसेज करके थक चुका था, लेकिन जब ध्रुव पेशेंट के साथ ओटी रूम में होता था तब वो किसी का भी फोन रिसीव नहीं किया करता था, लेकिन बार बार ध्रुव का फोन बज रहा था। उसकी एक फीमेल स्टाफ मेंबर फोन लेकर सर्जरी वाले रूम में आ गई थी और उससे कहने लगी, वो सर, आपका फोन बार बार बज रहा है। ध्रुव हैरान हो गया था कि इस तरह से उसे इतने कॉल्स कौन कर सकता है, लेकिन फिलहाल उसने स्टाफ मेंबर से बोल दिया था कि अभी वो कुछ समय तक उसे डिस्टर्ब ना करें। जब तक कि सर्जरी कंप्लीट नहीं हो जाती वो किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि इससे दिमाग डाइवर्ट हो जाता है तो किसी की जान को खतरा हो सकता था। ध्रुव कभी भी अपने पेशेंट की जान के साथ कोई रिस्क नहीं लेता था। कुछ घंटे में उसने अपनी सर्जरी को सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया था। फोन पर देव के 112 मिस कॉल देखकर वो पूरी तरह से घबरा गया। देव ने कम से कम 15-20 वॉइस मैसेजेस भी सेंड किए थे। ध्रुव ने वॉइस मैसेज सुनना शुरू कर दिया था। उसने अभी तक सर्जिकल गाउन ही पहना हुआ था। उसको टाइम नहीं मिला था कि वो सर्जिकल गाउन चेंज कर सके। जैसे ही उसने अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी, फटाफट से हॉस्पिटल आ जाओ, आस्था भाभी की कंडीशन खराब है। उसकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं था। वो बिना अपना सर्जिकल गाउन चेंज किए फटाफट से हॉस्पिटल की ओर रवाना हो चुका था।